इन मौद्रिक जारी करने की नीति विनिर्देशों के अलावा बिटकॉइन ने अपनी विशेषताओं के अन्य लोगों के लिए वित्तीय क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जो विकेंद्रीकरण के स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बिटकॉइन 100% प्रणाली है, खुला हुआ, कोई भी पहुंच सकता है, पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है और उपयोगकर्ता गुमनाम रह सकते हैं। न केवल मनुष्य इसका उपयोग कर सकते हैं, बल्कि उचित रूप से प्रशिक्षित सॉफ्टवेयर को भी इसके साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली सीमित है और इसमें उन लोगों के लिए बाधाएं हैं जो इसे एक्सेस कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। आज तक दुनिया की 40% आबादी के बारे में बात की जा रही है जिनके पास बैंक खाता नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास आधिकारिक पहचान की कमी है या दस्तावेजों में कमी है या कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया या क्योंकि किसी खाते को बनाए रखने की लागत किसी भी शेष राशि या किए गए आंदोलनों द्वारा उचित नहीं होगी। दोह बिटकॉइन एक तकनीक है। जनता इसके ब्लॉकचेन की तरह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ होने वाले सभी लेनदेन, यह किसी के द्वारा पारदर्शी और सत्यापन योग्य है, कोई धोखा नहीं दे सकता। अवैध उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना भी बेवकूफी होगी, क्योंकि उत्पत्ति ब्लॉक से आज तक का प्रत्येक लेनदेन ब्लॉकचेन पर अमिट रहता है और किसी को भी दिखाई देता है अभी और हमेशा के लिए। पारंपरिक वित्तीय प्रणाली नागरिक को अन्य उपयोगकर्ताओं की बिक्री और आंदोलनों को जानने की अनुमति नहीं देती है जब तक कि वे बैंक या नियामक निकाय न हों। यह अच्छा हो सकता है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं के बीच गोपनीयता की सेवा करता है, लेकिन यह बुरा है क्योंकि एक समुदाय के व्यक्तिगत सदस्य स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित करने में असमर्थ हैं कि क्या संस्थान स्वयं कानूनी और ईमानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तीन बिटकॉइन एक तकनीक है। सीमाओं के बिना ब्लॉकचेन के साथ काम करना शारीरिक रूप से संभालने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप दुनिया में जहां भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं स्थापित सॉफ्टवेयर और एक कनेक्शन पर्याप्त है। पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों में कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के लिए परिभाषित सीमाएं हो सकती हैं, उदाहरण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित उपकरणों से जुड़ना मुश्किल हो सकता है, क्या जो वास्तव में आभासी सीमाएं बनाता है। चार बिटकॉइन है तटस्थ। एक ट्रांसफर सिस्टम है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि प्रेषक या प्राप्तकर्ता कौन है, नहीं लेनदेन के कारण या आकार के बारे में। पारंपरिक वित्त कुछ लोगों या संगठनों को ब्लैकलिस्ट करता है और अक्सर एक हस्तांतरण को अधिकृत करने से पहले यह लेनदेन के कारण की जांच करता है। पांच बिटकॉइन है सेंसरशिप प्रतिरोधी। कोई भी निश्चित लेनदेन को पूरी तरह से रोकने का आदेश नहीं दे सकता है, चूंकि पैसे का यह नया रूप भौतिक विस्थापन पर नहीं बल्कि चाबियों और डिजिटल हस्ताक्षरों के संचार की प्रणाली पर आधारित है। संवाद करने में सक्षम होना अधिकांश देशों के लिए मानवाधिकारों का हिस्सा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के संचार पर प्रतिबंध लगाने या बाधा डालने की कोशिश करना भी अनैतिक है। दूसरी ओर पारंपरिक मौद्रिक और बैंकिंग प्रणालियों को एक या एक से अधिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करते हैं और व्यापक हस्तक्षेप की संभावना के साथ प्रणाली की कुल दृष्टि और नियंत्रण रखते हैं। इस संदर्भ में मानव कारक निर्णायक है और इसके साथ सभी समस्याएं जैसे कि पक्षपातपूर्ण विकल्प और भ्रष्टाचार। बिटकॉइन के बाद दर्जनों अन्य ब्लॉकचेन पैदा हुए, प्रत्येक संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ और कुछ अलग अलग अतिरिक्त मौद्रिक संपत्ति के साथ। नीचे ब्लॉकचेन के लिए हस्तांतरणीय धन्यवाद। प्रत्येक ब्लॉकचेन में एक विशिष्ट मौद्रिक नीति हो सकती है, जिसमें मुद्रास्फीति या अपस्फीति की प्रकृति, अधिकतम मात्रा के साथ या बिना, अधिक या कम तेजी से ब्लॉकों के निर्माण की विशेषता होती है। इनमें से कुछ हिस्सों ने उन्हीं स्तंभों को बनाए रखा है जिन पर बिटकॉइन तकनीक आधारित है, सेंसरशिप के लिए खुला, सार्वजनिक, सीमाहीन, तटस्थ और प्रतिरोधी। इसके बजाय अन्य परियोजनाएं वितरित रजिस्टरों का उपयोग करती हैं, जिसमें इनमें से कुछ स्तंभ सभी 100% लागू नहीं होते हैं।